समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। हेलो अनीता।
हेलो जया। हेलो एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। जया एंड आई ब्रिंग फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट हाफ आवर। एंड वी बिगिन विद न्यूज हेडलाइंस। फर्स्ट, Prime Minister Narendra Modi lands in China to attend the SCO summit after concluding two-day visit to Japan, says India-Japan friendship may scale newer heights in the times to come.
प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से मुलाकात की और उनसे भारत की विकास गाथा में भागीदारी बनने का आग्रह किया।
Union Minister Piyush Goyal hails GDP growth numbers of 7.8% in first quarter, says India is a global growth engine fueled by reforms and resilience.
जम्मू में भूस्खलन की दो अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया।
एंड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यू एंड वॉर फुटिंग इन पंजाब एज सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स रील अंडर मैसिव फ्लड्स। And time now for our segment Headline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. Today we will talk about Indo-Japan cultural ties. If one were to traverse the depth and breadth of Japanese thought, they'd encounter a concept that resonates deeply with the essence of existence, and that's called Ikigai. So what is Ikigai? The answer transcends a mere translation. Rooted in the fabric of Eastern philosophy, Ikigai beautifully encapsulates the joy that arises from being meaningfully engaged. It's about seeking purpose, finding bliss, and embracing life's true calling.
और मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं ने इकिगाई किताब जरूर पढ़ी होगी और अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़ें। यह किताब एक जापानी गुप्त सिद्धांत है जो आपको दीर्घायु यानी लंबी उम्र और खुशी के बारे में बताता है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे इकिगाई की जापानी अवधारणा का पालन करके आप अपने जीवन को लंबा और खुशहाल बना सकते हैं। यह एक सच्चाई है कि जापान में ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग सबसे लंबा और सबसे खुशहाल जीवन जीते हैं।
एंड ऑल्सो आई बेट मेनी ऑफ आवर लिसनर्स मस्ट बी बिंज वॉचिंग एनिमे इन देयर फ्री टाइम, दैट इज व्हेनेवर दे गेट अ चांस। एनिमे इज ओरिजिनली अ वर्ड फ्रॉम जापानीज रिटन इन काटाकाना, दैट मींस एनिमेशन। इन द सेंटर ऑफ द एनिमे एंथुसियास्ट इज द एनिमे कल्चर। एनिमे कल्चर इज अ कॉमन टर्म दैट रिफर्स टू अ सब कल्चर ऑफ फैंस हु आर इंटरेस्टेड इन जापानीज एनिमेशन। या
और बिल्कुल अनीता, और एनिमे के प्रशंसक तो दुनिया भर में हैं और उनकी अपनी अनूठी संस्कृति है। भारत में भी एनिमे संस्कृति बढ़ रही है। ड्रैगन बॉल जेड और नारुतो जैसी क्लासिक सीरीज से लेकर नए और सबसे लोकप्रिय शो तक एनिमे देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खुद अपने मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी में भारत को एनिमेशन और गेमिंग की दुनिया में ग्लोबल पावर हाउस बनाने की अपील की थी।
And also in India, anime has become a source of entertainment and also inspiration for many with its intricate storylines and captivating art styles. With the increasing popularity of anime in India, more and more people are beginning to explore the culture of anime and discover its hidden gems. Well, you must be wondering why we are talking at length about Japan in today's Dateline.
इतना हसीन
Well, yeah, it is because Prime Minister Narendra Modi concluded his productive two-day visit to Japan today.
जी और 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के पहले दिन भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से भी मुलाकात की. यह यात्रा भारत जापान साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है.
भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है. हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी.
इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप इज रूटेड इन म्यूचुअल ट्रस्ट reflects our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress and prosperity of our people and for the world.
And here, I'm sure our listeners must be knowing that Japan is an island nation in East Asia, located in the Pacific Ocean. It is an archipelago of 5 main islands, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, and Okinawa, and nearly 4,000 smaller ones. The characters which make up Japan's name mean sun origin, which is why Japan is sometimes referred to as the land of rising sun. It is mountainous, with the Japanese Alps running down Honshu and Mount Fuji being the highest peak.
जी और श्रोताओं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जापान और भारत के बीच आदान प्रदान 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब जापान में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ. बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति का जापानी संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है और यही जापानी लोगों की भारत के प्रति निकटता की भावना का स्रोत है.
And also our education ties are strong with 665 academic partnership and initiatives such as EduConnect, Universities Forum and SkillConnect in the year 2023, linking India's talent with Japanese employers. Japanese language learning in India and Indian studies in Japan are also expanding. Both sides are exploring cooperation on addressing Japan's aging population and skilling Indian youth, along with state to prefecture level partnerships.
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रांतों के राज्यपालों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत और जापान का हजारों वर्ष पुराना गहरा नाता है. हम भगवान बुद्ध की करुणा से जुड़े हुए हैं. बंगाल के राधा विनोद पाल ने टोक्यो ट्रायल्स में न्याय को रणनीति से ऊपर रखा. हम उनके अदम्य साहस से जुड़े हैं. मेरे होम स्टेट गुजरात से हीरों की व्यापारी पिछली सदी की शुरुआत में कोबे आए थे. हमामात्सू की कंपनी ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति पैदा की. दोनों देशों की यह उद्यमशीलता की भावना हमें जोड़ती है. इसके अलावा ऐसी कई गाथाएं हैं, कई रिश्ते हैं जो भारत और जापान को बहुत करीब से जोड़ते हैं. आज इन संबंधों में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, सुरक्षा, स्किल और संस्कृति के क्षेत्र में नया अध्याय लिखा जा रहा है. यह संबंध केवल टोक्यो या दिल्ली की कॉरिडोर तक सीमित नहीं है. यह संबंध भारत के राज्यों और जापान के लोगों की सोच में जीते हैं. आपके प्रीफेक्चर्स टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के असली पावर हाउस हैं. कुछ प्रीफेक्चर्स की अर्थव्यवस्था तो कई देशों से भी बड़ी है, इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी भी बड़ी है. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का फ्यूचर आपके हाथों से लिखा जा रहा है. भारत के कई राज्यों और प्रीफेक्चर्स की पहले से साझेदारी है, जैसे कि गुजरात और शिजुओका, उत्तर प्रदेश और यामानाशी, महाराष्ट्र और वकायामा, आंध्र प्रदेश और तोयामा. लेकिन मेरा मानना है कि यह साझेदारी केवल कागज पर नहीं रहनी चाहिए.
इट शुड हैपन फ्रॉम पेपर टू पीपल और प्रॉस्पेरिटी आल्सो नो.
जी, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि भारत के राज्य भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र बने. इसी सोच के साथ कल मैंने और प्रधानमंत्री इशिबा ने स्टेट प्रीफेक्चर्स पार्टनरशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा टारगेट है कि हर साल कम से कम 3 भारतीय राज्य और 3 प्रीफेक्चर के डेलीगेशंस एक दूसरे को विजिट करें. आप सबको इस इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा. और उन्होंने कहा कि भारत यात्रा करने का निमंत्रण देता हूं.
एंड लेट इंडिया स्टेट्स एंड जापान्स प्रीफेक्चर्स आल्सो को-पायलट आवर शेयर्ड प्रोग्रेस. दैट्स व्हाट द पीएम सेड. आइडियाज विल फ्लो, इनोवेशन विल ग्रो एंड अपॉर्चुनिटीज विल अनफोल्ड. In an interview with Nikkei Asia, Prime Minister Narendra Modi said, immense goodwill between the people of India and Japan naturally lends to cooperation in human resource. India has among the world's largest populations of skilled, talented and tech-savvy youth. And wherever you go, the Indian diaspora is known for its professionalism, discipline and hard work. I see a natural complementarity between our two countries. high-skilled and semi-skilled professionals, students and scientists from India can learn immensely from Japan, and at the same time they can contribute to Japan's growth. Similarly, Japanese expertise, investment and managerial acumen is most welcome in India's manufacturing, clean energy, infrastructure and high technology related sectors. Through this medium, I also invite the Japanese people to explore and experience incredible India. We would love to welcome many more Japanese tourists and students in India. I look forward to discussing many of these aspects of our bilateral ties with the Prime Minister and setting new ambitions for people-to-people exchanges between our nations. When young minds connect, great nations rise together.
और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जापान की यूनिवर्सिटीज विश्व प्रसिद्ध हैं। ज्यादा से ज्यादा भारतीय छात्र यहाँ आए, सीखें और अपना योगदान दे सके। इसी उद्देश्य के साथ कल प्रधानमंत्री इशिबा के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक्शन प्लान लॉन्च किया। इसके तहत अगले 5 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में 5 लाख लोगों के एक्सचेंज को प्रोत्साहन दिया जाएगा और साथ ही 50,000 भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स जापान भेजे जाएंगे। इसमें प्रीफेक्चर्स की अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी इच्छा है कि जैसे हमारे देश एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हर प्रीफेक्चर और हर भारतीय राज्य नए इंडस्ट्री बनाए, नए स्किल्स विकसित करें और अपने लोगों के लिए नए अवसर खोलें।
टोक्यो एंड दिल्ली कैन टेक द लीड बट
लेट कनागावा एंड कर्नाटका गिव वॉइस, लेट आईची एंड असम ड्रीम टुगेदर, लेट ओकायामा एंड ओडिशा बिल्ड द फ्यूचर।
सायोनारा। And time now to go over to our regional correspondents. Akashwani Kolkata began its service from the hallowed precincts of No. 1 Garstin Place, which was its birthplace. Its first official broadcast in Bengali was on 26th of August in the year 1927, marking 98 years of non-stop broadcasting service. Later on in 1958, it finally shifted to its current premises at Eden Gardens beside the iconic Cricket Stadium. A report.
The Kolkata station has since grown into a multi-channel radio station, having no less than 6 audio channels catering to a diverse spectrum of listeners from India and neighboring countries. It has also made its presence felt in the social media with its growing internet listenership. Perhaps the most recognizable program of Akashvani Kolkata is Mahishashur Mardini, which is broadcast on the auspicious day of Mohalaya since 1932, though the name Mahishashur Mardini was given in 1937. It can be said that this program heralds the advent of Durga Puja celebrations in Bengal and elsewhere. Akashvani Kolkata today still evokes memories of the past and continues to mirror the present, staying relevant in a fast-changing world. Sushmita Mondol, Akashvani Kolkata.
आईआईटी हैदराबाद ने शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ विग्रह नामक एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विग्रह उभरती हुई तकनीकों के लिए भारतीय सेना के लिए एआरवीआर और उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों में से एक आभासी बुद्धिमान और अभूतपूर्व अनुसंधान है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
The Indian Institute of Technology Hyderabad has signed a memorandum of understanding with the Army Training Command Shimla, represented by the Secunderabad-based Simulated Development Division. The MOU is meant for setting up a center of excellence called Vigraha, which deals with virtual, intelligent, groundbreaking research in augmented reality and virtual reality, beside high-tech applications for the Indian Army. This collaboration is expected to lead to cutting-edge research and development in AR/VR, artificial intelligence, robotics, unmanned systems and other emerging technologies for the Indian Armed Forces. The MOU has been signed in the presence of IIT Hyderabad Director Professor B.S. Murthy. The simulated development division has been represented by Brigadier A.K. Chaturvedi, along with Head of Department Colonel Hari Om Ahlawat and Project Officer Lieutenant Colonel Anupam Porwal. Dean IIT Hyderabad Professor G. Narahari Sastri and Principal Investigator of the Center and Associate Professor Dr. Shivaji signed for the IIT. Speaking on the occasion, Professor B.S. Murthy said, "The partnership exemplifies the synergy between academia and the armed forces in fostering innovation and advancing the nation's technological capabilities. The Center of Excellence, Vigraha, will be a significant step towards realizing India's vision of Atmanirbhar Bharat in defense technologies. The MOU is aimed at creating a robust framework for joint academic programs, research and development projects, innovation initiatives, and capacity building exercises." Lakshmi Parikrama, Hyderabad.
Going over to the north, in Ladakh, over 250 beneficiaries successfully availed passport services during the special passport seva camp organized in Kargil, bringing immense relief to students, pilgrims and the general public who otherwise face the burden of travelling long distances to Leh or Srinagar. A report.
Despite unpredictable weather conditions that prevented several applicants from reaching on their appointment dates, the continuous camp in the last 3 months ensured maximum benefit to the people of Kargil. The initiative has not only saved time but also significantly reduced travel and accommodation expenses. The people of Kargil extended heartfelt gratitude to Mr. B. S. Rawat, Regional Passport Officer, Srinagar, for deputing a dedicated team for such an extended duration. Chairman Hajj Committee Ladakh Muhammad Ali Majaz, as a token of appreciation, presented certificates of recognition to the visiting team for their commitment and service. He expressed thanks to the Ministry of External Affairs for their support in making the camp a grand success. Majaz requested the ministry to consider special provision for applicants who could not attend their appointment due to the adverse weather condition. Furthermore, he strongly urged the Ministry of External Affairs to establish a permanent passport seva kendra in Kargil, which would address the long-standing demand of the people and provide easy doorstep access to vital services. For Parikrama, this is Anad Ali from Kargil, Union Territory of Ladakh.
Going over to the south part of the country, the inland fish farming practice has been gaining momentum across the delta districts of Tamil Nadu as the farmers, by and large, are approaching the integrated farming system in a bid to boost additional revenue apart from just relying upon the crop cultivation. A report.
Being one of the vast inland fishery resources of the country, with around 4 lakh hectare in form of ponds, tanks, rivers, reservoirs and brackish water, Tamil Nadu boasts of an annual production of 2,32,000 metric ton. The aqua farmers of the state, particularly from Delta region, urge the government to increase fish seed production and provide a subsidy to boost the livelihood of more than 3 lakh people. Tamil Nadu has several long seasonal and short seasonal irrigation tanks and ponds suitable for the capture and culture of fish varieties. Apart from this, around 56,000 hectares of brackish water area in the form of estuaries, backwaters and creeks are available for the potential aqua farming activities. Besides these water bodies, a total of around 7,400 kilometers of rivers and canals offer good scope for fisheries development, and the state also has resources for cold water fisheries. The government is committed in strengthening the infrastructure facilities for fish seed rearing and production, partnering with private firms, and thus the production has achieved 2.32 lakh metric ton valued at 6,279 crore rupees. Several fish species, namely mural fish, rogu, katla, mrigal, common carp and grass carp, are being cultured in the freshwater ponds across the region, particularly in Trichy, Tanjore, Trivarur, Mayiladuthurai, Nagapattinam and Pudukottai. The Delta region contributes 35% of total inland fish production. The government is providing a 40% subsidy for aqua farming that includes infrastructure development. As the central government aims and takes various steps to increase the income of farmers, the inland aquaculture in Tamil Nadu holds significant potential, thereby boosting the income of farmers and their livelihood. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashwani, Tiruchirappalli.
Thank you.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। भारतीय महिला हॉकी टीम शुक्रवार से शुरू हो रहे एशिया कप में भाग लेने के लिए आज चीन की हांगझू रवाना हो गई है। कप्तान सलीमा टेटी के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम इस टूर्नामेंट को जीतकर अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप में अपना स्थान पक्का करने की कोशिश करेंगी। भारतीय टीम ने महिला हॉकी एशिया कप 2004 और 2017 में दो बार जीता है। उधर अनिरुद्ध चंद्रशेखर और विजय प्रशांत अमरीकी ओपन टेनिस के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने अमरीका के क्रिश्चियन हैरिसन और इवान किंग को हराया। इस बीच भूटान के थिम्फू में सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में कल भारत ने नेपाल को 5-0 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब पक्का कर लिया। अंतिम मैच में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। भारत प्रतियोगिता में अब तक अजेय रहा है। अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि या जयंती या जन्मदिन है। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
In today's episode, we bring you the story of freedom fighter and later Chief Minister of Odisha, Binayak Acharya, who was born on this day 1918 in Barhampur, Odisha, affectionately called as Odisha's Ajat Shatru, which means one who has only friends and no enemies. A frail-looking man, the khadi-clad Vinayak Acharya was a simple and soft-speaking gentleman. He was closely associated with the Indian freedom struggle and actively participated in the Quit India movement, which had a marked impact on the city of Barhampur.
He played a vital role in all the phases of manifold development of Odisha. His political, social, educational and administrative contributions especially merit high appreciation. He was deeply influenced by his father Raghunath Acharya and a contemporary literary personality, Ramachandra Acharya.
Vinayak was an independent-minded person and never wanted to join any government service under the British. Consequently, he joined a non-government high school in Hinjilikat and subsequently joined the Barhampur Municipal High School as an assistant teacher. He had a great quality of perseverance and was a promising and pragmatic leader in his own field.
From the beginning, he was attracted towards socialism and proved to be a true Gandhian in the subsequent phases of his life. During the Quit India movement, Acharya worked as a messenger of the freedom fighters to pass on relevant information from person to person, talking exclusively to AIR, eminent Gandhian Dr. Biswajit Roy, trustee, Central Gandhi Smarak Nidhi, Odisha, shed light on the contribution of the great freedom fighter.
जब अंग्रेज भारत छोड़ो कार्यक्रम शुरू हुआ और उसमें पूरा देश के साथ साथ उड़ीसा भी उस आंदोलन में कूच पड़ा, उसी समय में विनायक आचार्य जी और उनके बड़े भाई सत्यनारायण आचार्य जी, ये दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जो संग्रामी जेल जाते थे उनके परिवार को मदद करने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब देश को आजादी मिली, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया।
Acharya made significant contributions to the educational advancement of Odisha. His popularity as a good teacher attracted students not only from Barhampur and Ganjam district but also from all over Odisha.
As a result, he was affectionately called Binu Master by all. During his teaching career, he formed Navotkal Seva Sangh to help the downtrodden of the society. Harida Khandi Math was established at his initiation to help the poor students.
In 1954, when language clashes broke out in southern Odisha, Acharya led peace squads in the troubled areas. He also joined the cause of downtrodden communities, often shocking orthodox communities, by sitting down to a meal with lower caste communities. Acharya always remained committed for the development of education, the country's sovereignty, secularism, national integration and eradication of class biases. During his chief ministership from 1976-77, he laid considerable emphasis on the elementary education and made efforts to reduce the school dropout cases. He passed away on 11 December 1983.
However, Binayak Acharya still lives in the memory of our great nation for his selfless devotion to national causes. His zeal towards social reforms will continue to inspire people to work for the empowerment and upliftment of weaker sections of the society. India is forever indebted to the selfless service of such great persons.
And talking about more people who were either born this day or who passed away today, we begin this segment by remembering Louise Lynn Hay, whose death anniversary is today. She passed away in 2017. She was an American motivational author, professional speaker and AIDS advocate. She authored several New Thought self-help books, including the 1984 book You Can Heal Your Life, and founded Hay House Publishing. In 1976, Hay wrote a self-published first book, Heal Your Body, which began as a small pamphlet containing a list of different bodily ailments and their probable metaphysical causes. This pamphlet was later enlarged and extended into her book, You Can Heal Your Life, published in 1984. In February 2008, it was the fourth on the New York Times paperback advice bestsellers list.
आज ही पुण्यतिथि है प्रख्यात इतिहासकार और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पूर्व अध्यक्ष बिपिन चंद्र की। प्रोफेसर बिपिन चंद्र भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में मार्क्सवादी चिंतनधारा के इतिहासकार थे। महान इतिहासकार बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने इतिहास और राष्ट्रवाद को एक नया मोड़ दिया।
Today is also the death anniversary of Sir John Joseph John or J.J. Thomson. He passed away in 1940, was the English physicist who studied cathode rays, led to his discovery of the electron and subatomic particles with a negative electric charge. In 1897, Thomson showed that cathode rays were composed of previously unknown negatively charged particles. Now we call them electrons, which he calculated must have bodies much smaller than atoms and a very large charge to mass ratio. Thomson is also credited with finding the first evidence of isotopes of a stable non-radioactive element in 1912. Thomson was awarded the 1906 Nobel Prize in Physics in recognition of his great merits of his theoretical and experimental investigation on the conduction of electricity by gases.
आज जयंती है भगवती चरण वर्मा की। हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार, साहित्यकार, कथाकार और एक जमाने के चर्चित कवि एवं पत्रकार और फिल्म पटकथा संवाद से लेकर भगवती चरण वर्मा साहित्यकारों में भगवती बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा के रेडियो रूपक महाकाल कर्ण द्रौपदी, जो 1956 ईस्वी में त्रिपथगा के नाम से एक संकलन के आकार में प्रकाशित हुई, उनकी विशिष्ट कृतियां हैं। हालांकि उनकी प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी का आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में अपना एक अलग महत्व है। 1978 के करीब उनका एक उपन्यास चाणक्य काफी प्रचलित हुआ था। प्रसार भारती को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इनके बारे में बात की थी।
चाणक्य शायद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि चित्रलेखा, बल्कि चित्रलेखा में रोमांस है, कल्पना है। चाणक्य में कल्पना नहीं है, रोमांस नहीं, लेकिन चाणक्य में ऐसा सत्य है और इतना कठोर और सही सत्य है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
He also served as a Hindi advisor at All India Radio Lucknow, and later in 1978 he was nominated to the Upper House of Indian Parliament, Rajya Sabha. A song or a snippet of a song from his film Chitralekha.
संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे संसार से भाग।
आज ही जयंती है शंकरदास केसरी लाल की। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार थे वे। सरल और सटीक शब्दों में भावनाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर देना शैलेंद्र जी की महान विशेषता थी। फिल्मों में गीत लिखने की अपने पहले देश के आजादी की लड़ाई में योगदान देने का उनका एक अलग ही तरीका था। फिल्मों में आने के बाद भी उनका ये जज्बा बना रहा, इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए ये लिखा था, मेरा जूता है जापानी।
मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
Time now to wind up our program Parikrama. So this is Jay and Anita saying bye to our listeners. Thanks for tuning in and
namaskar.